समय बहुत ही तीव्र गति से जा रहा है और अंत का समय समीप आता जा रहा है। तो अंत का समय तो समीप आता जा रहा है, लेकिन हम अपने आप से ये सभी पूछें, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है? क्योंकि संपूर्ण तो हरेक को बनना ही है। तो समय कम है और मंजिल बहुत दूर है या ऊंची है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर हमें अपने पुरुषार्थ की गति को फास्ट करना पड़ेगा, तीव्र करना पड़ेगा, तभी हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे। अन्यथा समय की दौड़ में पीछे रह जाएंगे और पश्चाताप करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, आप में से कोई 10-20 साल 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी हम जो चाहें वैसा या बाबा जो चाहें वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाए, या कहेंगे कि अपने पुरुषार्थ से हमने अपने आप को संतुष्ट नहीं किया, तो सोचने की बात है, भगवान के बन के हमने क्या किया? ज्ञान में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में तो सभी पहुंच जाएंगे, बाबा के बच्चे जो भी बने हैं, लेकिन हमारा पद क्या होगा? वो होगा आपके पुरुषार्थ के आधार से। तो इतना पुरुषार्थ हम अवश्य कर लें अपना, कि हम अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्टता की अनुभूति करें, तभी तो हम दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे ना। तो हर एक अपने दिल से ये पूछे, क्या मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं? एक संपूर्ण बनना, वो तो 52 का लास्टम बनेंगे, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से मेरा पुरुषार्थ जितना होना चाहिए उतना है? मैं अपने आप पुरुषार्थ से वर्तमान समय के हिसाब से संतुष्ट हूं? वो हर एक अपने आप को चेक करे, नहीं तो क्यों, कहां क्या कमी कमजोरी रही हुई है? तो इसी संबंध में कुछ एक अव्यक्त बाप दादा ने जो बातें वाणियों में कही हैं कि तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट के कारण क्या है और किन बातों को हम तीव्र पुरुषार्थ का आधार बना के चले तो हमारा पुरुषार्थ निरंतर तीव्र गति का बना रहे। तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन तीन मुख्य कारण बताए बाबा ने जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बन के सामने आते हैं। तो सबसे पहला कारण है मैं और मेरापन, मैं और मेरापन, मेरे अंदर ये गुण विशेषता, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैंने बहुत अच्छी सेवा की, कोई क्लास में नाम अनाउंसमेंट करे, थैंक्स दे, हैं? अर्थात कुछ पाने करने के बाद कुछ पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, हैं? तो ये हमें इच्छाएं अच्छा नहीं बनने दे, ये मैंपन का अभिमान पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनता है। कौन करा रहा है, किसकी सेवा है, हैं? हम आप सब तो निमित्त बन के पाठ बजा रहे हैं, ये बाबा करा रहा है, उसकी सेवा है। तो जहां पर भी मैं शब्द याद आए तो अपना श्रेष्ठ स्वमान याद आए, और मेरा शब्द जहां भी आए तो मेरा प्यारा बाबा ही याद आए, क्योंकि मेरी कोई भी चीज है जिससे मेरापन है वो भी बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनता है। तो अभी भी आप सबसे पूछा जाए, भाई मैं मेरेपन से मुक्त हुए हो, तो सभी कहेंगे हाँ हम तो मुक्त हो चुके हैं, कुछ सब बाबा का ही है, वही सब कुछ करा रहा है, वही चला रहा है। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा, उसके लिए एक संदेश में अव्यक्त बाप दादा ने ये बात कही कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे, तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा कि मोटे रूप के मैं मेरे पन से तो बच्चे मुक्त हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो उस बात का पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए उस संदेश में ही बाबा ने तीन बातों का यंत्र दिया। अब आप सुनते भी जाना और अपने आप को चेक भी करते जाना। तो बाबा ने कहा कि देह भान से न्यारे होकर, तो सभी देह भान से न्यारे हो जाओ, आत्मअभिमानी बन जाओ। देह भान से न्यारे होकर साक्षी दृष्टा बनकर कि खेल नाटक चल रहा है, उसमें हम सभी अपना अपना शरीर धारण कर आत्माएं एक्टर के रूप में पार्ट बजा रहे हैं। और तीसरा बाबा ने कहा कि संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। अब ये तीन बातों का यंत्र मिला, देवभान से न्यारे होकर, साक्षी दृष्टा बनकर, संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। अब चेक क्या करना है कि यदि अचानक ऑर्डर मिले छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी है, हर एक अपने आप से पूछ ले। मान लो यहां बैठे बैठे अभी बाबा की तरफ से इशारा मिले कि बच्चे सब कुछ छोड़ के एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम एक सेकंड में सबसे बुद्धि योग निकाल कर उड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं? अगर पहुंच सकते हैं तो समझो कि मैं मेरेपन से मुक्त हुए हैं। और अगर जिसमें भी मेरापन होगा तो उस समय बुद्धि उधर जाएगी, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बुद्धि गई तो पेपर तो एक सेकंड का ही होना, तो फेल। इसलिए जिसने सबसे अपने आप को मैं मेरेपन से मुक्त किया होगा, सबसे बुद्धि योग निकाला हुआ हो, ऐसी आत्मा एक सेकंड मुड़ के बाबा के पास पहुंच सकेगी तो कहेंगे कि मैं मेरेपन से मुक्त हुए हैं, नहीं तो अभी भी रहा हुआ है। दूसरा कारण बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थ में जो रुकावट का बनता है वह है हद की इच्छाएं। हद की इच्छाएं, ये प्राप्ति हो या ये साधन सुविधा मिले तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी मैं, है? तो ये क्या हो गया, हद की इच्छाएं। पवन का इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देंगे, है? अधिक धन कमा लूं तो अच्छा पुरुषार्थ करूंगा, बाबा की सेवा में सफल करूंगा, है? इच्छा एक पूरी होती है दूसरी पैदा हो जाती, तीसरी पूरी होती है तीसरी पैदा हो जाती। तो इच्छा रखनी है तो हद की नहीं, बेहद की इच्छा रखो। कि क्या बेहद की इच्छा, कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, मुझे बाप समान बनना ही। बाबा ने कहा तुम ये मेरी एक इच्छा पूरी करो तो मैं तुम्हारी सब इच्छाएं स्वतः ही पूरी कर दूंगा। और तीसरा बड़ा कारण जो बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का, वो है कि एक दूसरे से, एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कापी करना। ये सब बातें बाबा ने मुरलियों में कही हुई है। एक दूसरे को देखना, उनके वो ऐसे हैं, उनके अंदर ये कमी कमजोरी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, है? सोचने की बात है ये। तो देखो राजधानी स्थापन हो रही है तो सबका पुरुषार्थ तो एक जैसा वैसे भी नहीं होना, नंबर वार ही होना है, तो कमी कमजोरी तो जब तक वो आत्मा ना चाहे तब तक रहेंगी ही अंत तक। लेकिन हम अपने आप से पूछे, हम इस ज्ञान में किस लिए आए, किसके अंदर क्या कमी कमजोरी है, देखने के लिए तो नहीं आए थे ना, है? अपने आप को देख के बाप समान बनने के लिए बाप इस ज्ञान में आए, तीव्र पुरुषार्थ करके बाप समान बनने के लिए ज्ञान में आए। तो जिस लक्ष्य को लेकर हम इस ज्ञान में आए उसको ही सामने रखें, बाकी किसी को देखते हुए भी नहीं देखे। देखना ही है तो हरेक की गुण विशेषता महानताओं को देखो और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की तुलना करना। उनके पास ये साधन है, उनके पास सुविधा है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अब हम जो चाहें सब कुछ ही तो हमें नहीं मिल जाएगा, कई बार मिल भी जाता है कई बार नहीं मिलता है, मिल गया तो खुश, नहीं मिले तो परेशान। तो हम जो चाहें सब कुछ हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिसके पास जो भी साधन सुविधा है वो उसकी तपस्या का फल है। तो हम तुलना करनी है तो पुरुषार्थ में कीजिए, अच्छाइयों में कीजिए, ना कि स्थूल साधन सुविधाओं में कीजिए, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। इन तीन कारणों का निवारण करें। और कुछ एक बातें बाबा ने जो बताई हैं, तीव्र पुरुषार्थ को जिनका आधार बना के चले तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। तो पहली बात, बाबा ने कहा नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। ज्ञान हम सभी को है, योग भी हम सब करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं वैसा पुरुषार्थ क्यों नहीं हो पाता है हमारा? हाँ, जो पहले भी पहली क्लास में बताए थे ये पॉइंट हमने थोड़ा, कि योग अगर हमारा पावरफुल नहीं है, बीज रूप बिंदु रूप फरिश्ता स्थिति का नहीं है, ज्वालामुखी योग नहीं है, तो साधारण योग से संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं, साधारण योग से भी कर्मों का विनाश नहीं होता है। तो उसके लिए हम अपने योग को पावरफुल बनाएं। कैसे बनाएं? वो मैंने तीन अभ्यास बताए, तो अभ्यास अभी से सभी करें तो निश्चित रूप से हमारा योग पावरफुल होगा और हमारा पुरुषार्थ उससे संस्कार परिवर्तन होंगे, विकर्मों का विनाश होगा तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। दूसरी बात, सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो। जो भी बाबा ने नियम मर्यादाएं बताए हैं अमृत वेले से रात्रि तक, अगर उन सभी की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हम करके चलते हैं तो कदम कदम पर आपको बाबा की मदद मिलती रहेगी। देखो दुनिया में भी कोई बच्चा बाप का कहना मानता है तो बाप आगे से आगे सारी सुख सुविधाएं साधन उसको लाकर देता है, उसको मांगना नहीं पड़ता। ऐसे यदि हम भी बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे बन के चलेंगे, हर श्रीमत की पालना करके चलेंगे, तो बाबा की मदद ऑटोमेटिक आपको जितना कायदों का पालन उतना ही फायदा मिलता रहेगा। तो इस पर एक कहानी छोटी सी। एक आलसी व्यक्ति था, बहुत आलसी था, वो खाता पीता सो जाता था, कुछ करना चाहता था लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। तो क्या हुआ कि वो खुद भी परेशान था आलस के संस्कार से, तो एक दिन वो परेशान होकर अपने गुरुजी के पास गया और कहा कि महाराज मैं इस संस्कार से मुक्त होना चाहता हूं, कोई विधि बताओ। बोला अच्छा, बोला हाँ। तो गुरुजी ने सोचा कि मैं कुछ कहूंगा तो ये आलसी है, कुछ करेगा तो है नहीं, इसलिए इसको ही ऐसा एक कोई काम दे दिया जाए जिसकी पालना ये रोजाना खुद करके चल सके। तो उसको ही कहा कि देखो भाई, आप ऐसा अपने जीवन का एक कोई नियम बना लो जिसका आप पालन रोजाना करके चल सको। अब वो सोचने लगा ऐसा क्या नियम बनाऊं मैं, तो उसने देखा सुबह 9 बजे एक व्यक्ति उसके घर के आगे होकर निकलता है, शाम को 5 बजे वापस आता है। तो उसने सोचा मेरे लिए ये नियम ज्यादा बेटर रहेगा कि सुबह 9 बजे इस व्यक्ति को देखने के बाद ही मैं नाश्ता करूंगा, अब इसमें तो उसको कुछ करना ही नहीं है। 9 बजने 5 मिनट पहले अपने गेट के आगे आके खड़ा हो जाए और 9 बजे व्यक्ति आए उसको देखे वो नाश्ता कर ले, तो सहज इस नियम का पालन करना उसके लिए। 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीते, 4 महीना बीत गए, ऐसे करते करते अब 4 महीने तक रोजाना जब उस व्यक्ति ने उस नियम का पालन किया तो क्या हुआ, तो एक संस्कार बन गया उसका। तो 4 महीने के बाद वो व्यक्ति एक दिन 9 बजे नहीं आया तो वो बड़ा परेशान, कहां गया, क्यों नहीं आया, इधर जाए इधर देखे उधर देखे, अंदर जाए बाहर आए है? अब उसका नियम बन गया उसको बिना देखे वो नाश्ता नहीं कर सकता और भूख भी लग रही है उसको है? तो ऐसे देखते देखते उसने देखा तो उसके घर के सामने ही थोड़ा ही दूर खेत में वही व्यक्ति कुछ खोद रहा है। अरे बोलिए तो वहां खोद रहा है। तो जैसे ही इस व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो उस समय जो वहां खोद रहा था तो खोदते खोदते उसको जमीन से एक सोने की मोहरों का भरा हुआ घड़ा निकला। तो उसने देखा ये तो बहुत बड़ा खजाना है, तो मैं निकाल तो रहा हूं ये खजाने को लेकिन मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है, अगर किसी ने देख लिया और पता चल गया तो वो खजाना ये पुलिस या गवर्नमेंट ले जाएगी, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो जैसे ही उसने ऐसे देखना शुरू किया तो इतने में उस व्यक्ति की नजर इस पर पड़ी तो वो देखते जोर से चिल्लाता है कि मैंने देख लिया है, देख लिया है, देख लिया। अरे बोले तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला है, इसने देख लिया है तो अगर किसी को बता दिया तो सारा खजाना चला जाएगा। अब वो तो इसलिए चिल्लाया कि मैंने देख लिया तो मेरा नियम पूरा हो गया, मेरे को भूख लग रही है, मैं नाश्ता करूंगा, और उसने ये समझ लिया कि मेरे को इसने ये खजाना निकालता हुआ देख लिया है। तो फटाफट उसने निकालने के बजाय वो खजाना वहीं थोड़ा सा दबा के और दौड़ के इसके पास आया और कहा कि भले भाई आपने देख लिया है लेकिन आप किसको बताना नहीं, हम आधा खजाना आपको दे देंगे। वाह, ये तो बड़ा खुश हो गया। बोल क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं था। तो फिर उसने कहा कि देखो जब आपने चिल्लाया ना जोर से कि मैंने देख लिया है तो मैं जो वहां खोद रहा था तो जमीन से एक सोने की मोहरों का भरा हुआ घड़ा निकला है, तो आप किसको बताना नहीं, हम आधी मोहरें आपको दे देंगे। तो वाह, ये तो बहुत बड़ा खुश हो गया, बिना मेहनत के इतने बड़े खजाने का मालिक बन गया। किस आधार से? एक नियम का पालन करके चलने से। तो देखो उस खजाने की तो कोई गारंटी नहीं इस जीवन में कब तक रहे ना रहे, लेकिन भगवान जो हमें 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजानों के मालिक बना रहा है उसका आधार है बाबा द्वारा दिए हुए सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना। अगर वो हम करके चलते हैं तो हम अनेक जन्मों के लिए अविनाशी खजानों के प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी कम नहीं होने देंगे। जो हमें बनना है करना है वो अमृत वेले आंख खुलते ही एक दृढ़ संकल्प अपने अंतर मन में भर दो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे बाप समान बनना ही है। ये एक पावरफुल दृढ़ संकल्प अमृत वेले अपने अंतर मन में आंख खुलते ही भर दो तो उस समय हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है तो उन बात को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। देखो अव्यक्त बाप दादा आते हैं, मुरली चलाते हैं तो हमारे से कई बातों की दृढ़ संकल्प कराते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं। फिर बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, हम दोनों हाथ उठवाते हैं हमारे से। फिर बाबा कहते हैं इनका वीडियो निकालो, फोटो निकालो, हैं? हम खुशी खुशी से दो दो हाथ उठाते हैं। मुरली सुनी, भोजन किया, कमरे में आके सो गए, दूसरे दिन कर्म में लगे। दूसरे दिन शाम तक पूछो कल बाबा से क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या होता है? कईयों को तो बात ही भूल जाती है, कईयों को याद भी रहती है तो हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, वो गेगिम बदल जाती है। कई कुछ कर भी पाते हैं तो बहुत थोड़े लोग ही थोड़े परसेंटेज में कर पाते हैं, ऐसा होता है ना? क्यों? हमने तो भगवान के आगे दो दो हाथ उठा के प्रतिज्ञा की थी, हाँ हमें से करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? क्यों हमारा दृढ़ संकल्प साधारण संकल्प बदल गया, क्यों हम चाहते हुए वैसा नहीं कर पाते हैं? उसके बाबा ने चार कारण बताए क्यों हमारी दृढ़ता साधारणता में बदल जाती है। उसके चार कारण बताए, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। जब बुद्धि इन चारों बातों में जाती है तो उससे आत्मा का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा इन चारों परों को कट कर दो और एक पर लगा के रखो। कौन सा? पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे और पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। तो जहां दृढ़ता है वो दृढ़ता हमारी कैसे सफलता का आधार बनती है। पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे, तो कैसे दृढ़ता सफलता का आधार बनती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई एयरफोर्स में काम करते थे, तो ये उस समय की बात है जब बाबा टीवी पर देखने में नहीं आता था, केवल सेंटरों पर ही देखने में आता था। सभी भाई बहन वहां जाके देखते भी थे, मुरली सुनते थे। तो उस दिन बाबा को आना था तो उस भाई ने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी कि आज मुझे घर पे जरूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन उसकी दृढ़ता कम नहीं हो रही, वो बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा कि बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है, इतना दृढ़ संकल्प था उसका। उसको छुट्टी मिलने का एक ही तरीका है कि मौसम खराब हो, प्लेनों का उड़ना बंद हो जाए, एयरपोर्ट बंद हो, तो उसको छुट्टी मिल सकती है। अब ये तो इतना सहज काम नहीं, उसके बस की बात है, लेकिन उसकी दृढ़ता कम नहीं हो रही थी। वो बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा कि बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आपकी मुरली सुनने सेंटर पर जाना ही है। तो ऐसे ऐसे वो देखते देखते जैसे शाम के करीब 5 बजने को आते हैं तो वो देखता है तो मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है, मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है, प्लेनों का उड़ना बंद हो जाता है, एयरपोर्ट बंद होता है, उसको छुट्टी मिल जाती है। तो सोचिए दृढ़ता में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए परिस्थिति समस्या कैसी भी हमारे सामने क्यों न आए लेकिन हम अपनी दृढ़ता को कभी कम नहीं होने दें, दिल से याद कर बाबा को यही कहें कि बाबा मुझे ऐसा बन के दिखाना है, करके दिखाना है। हम कहें कि हम पास हो गए, पेपर दे ही नहीं, कैसे पास कहा जाएगा? पेपर देने के बाद ही पास कहा जाएगा ना? तो समस्याएं हमारा परिस्थितियां हमारा पेपर के रूप में आती है, हम उनसे घबराएं नहीं है? भगवान ने हमको नॉलेज दी, ज्ञान दिया है, उसको यूज करें। तो निश्चित रूप से कदम कदम पर यदि हम दृढ़ संकल्प करके चलेंगे तो सफलता हमारा साथ देती रहेगी और जो जीवन में लक्ष्य रखा है वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम प्रभाव मुक्त बने। कोई परिस्थिति आ गई या किसी ने कुछ बोल दिया या कोई तबीयत ठीक बीमार हो गए हैं तो ये क्या है उसका उन बातों का परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है, स्थिति हलचल में आ जाती है। कैसे प्रभाव मुक्त बनेंगे? एक बार इसी बात के ऊपर हमारे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में अच्छी चर्चा हुई थी तो उसमें बहुत सारे पॉइंट निकले। प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए याद करो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसने अपना पार्ट बजाया, मेरा पार्ट क्या है? हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। और कैसे मुक्त रहेंगे? जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा कल्याणकारी है। अब ये ज्ञान तो है लेकिन कल्याणकारी इस पर निश्चय हमारा होना चाहिए। कई बातें ऐसी होती हैं सामने से लग रहा है कि आपको वर्तमान के रूप से देखने में तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा, नुकसान हो रहा, लेकिन यदि आपका ये पाठ पक्का है कि ड्रामा कल्याणकारी है तो बाबा के ही शब्द हैं, बच्चे हर अकल्याण के पीछे कल्याण, हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण समाया हुआ है, छुपा हुआ। अगर ये निश्चय है तो निश्चित रूप से उसमें कल्याण ही रिजल्ट रूप में उसका सामने आएगा। एक छोटा सा अनुभव, हम महाराष्ट्र में गए थे बुरहानपुर भट्टी कराने, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। तीसरे दिन और संडे के दिन 4 जगह क्लास रखा था। तो उस दिन सुबह से ही बरसात शुरू हो गई। अब बरसात शुरू होगी तो ये तो मैंने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, अब 4 जगह क्लास कराने जाना है, बरसात शुरू होगी सुबह से ही तो ये तो ठीक नहीं हुआ। मैं बाबा को याद करके कह रहा बाबा बरसात अगर बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा ताकि सब भाई बहन क्लास में आए तो अच्छी सेवा कर सके। लेकिन बरसात बंद नहीं हुई। फिर हमने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया कि मैंने कहा बाबा ने ज्ञान दिया, बच्चे जो हो रहा है इसमें भी कुछ कल्याण होगा है, और हल्के हो गए, हमारा कोई ज्यादा संकल्प नहीं चला। तो सुबह 7 बजे के करीब एक सेंटर पर क्लास कराने पहुंचे तो वहां बहन जी ने पहले परिचय दिया और फिर क्लास शुरू करने के पहले फिर बहन जी बोलने लगी कि देखो आज मधुबन से भाई आए हैं और आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कमाल है, हम तो सोच रहे थे अच्छा नहीं हुआ, और बहन जी कहती अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया जी? बोल देखो हमारे यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती हैं, तो पापड़ बनाती हैं तो धूप खिली होती है तो पापड़ सूख जाते हैं, और आज आ गई बरसात तो किसी क्यों पापड़ सूखेंगे नहीं, इसलिए किसी ने पापड़ बनाए नहीं तो सब माताएं घरों में फ्री होगी तो सारी माताएं क्लास में आ गई। वाह, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा हो गया। तो इसलिए ड्रामा में जो हो रहा है उसी में कल्याण है, इसमें हमें निश्चय होना चाहिए। तो और दूसरा उस समय याद करो प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए कि ये बात बड़ी या बाप बड़ा। एक व्यक्ति के 2 शब्द सुनकर हम हलचल में आ गए कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, और बाबा रोजाना जो 4 पेज की मुरली सुनाता है उसे सुनकर कई बार भूल जाते हैं, तो वो बात बड़ी या बाप बड़ा है? अब सब कहते हैं तो बाप बड़ा, लेकिन हो क्या जाता है उस समय? बात बड़ी हो जाती है। क्यों समय पर यह पॉइंट याद नहीं आती? क्योंकि हम ज्ञान को रिवाइज नहीं करते। तो जैसे और कामों के लिए हम टाइम देते हैं ऐसे अपनी स्वउन्नति के लिए हम आधा या 1 घंटे का समय फिक्स कर दें और उसमें एकांत बैठ के अपने आप से बात करें, मैं बाबा की क्यों बनी हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वर्तमान समय बाबा मेरे से क्या चाहता है, क्या मैं वही कर रही हूं जो बाबा चाहता, नहीं तो क्यों। ऐसे ऐसे जब एकांत बैठ के बात करेंगे तो मन जो दूसरी बातों में चला जाता है उन सब से निकलकर अपने लक्ष्य पर आ जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी, और उसी समय 1 अव्यक्त मुरली रोजाना जरूर पढ़े तो उससे ज्ञान की सारी बातें रिवाइज होती रहेंगी तो जब जैसी बात परिस्थिति आई तुरंत वैसी पॉइंट का प्रयोग कर विजयी बन जाएंगे, तो आपको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा और हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए 2 बातों को अंडरलाइन करें, 2 बातों को अंडरलाइन करें, क्या ये बाबा के नहीं बताई है 2 बातें अव्यक्त मुरली में, फुल स्टॉप और फुल स्टॉक, दोनों इंग्लिश शब्द हैं, फुल स्टॉप और फुल स्टॉक। फुल स्टॉप माना हम जब चाहे जहां चाहे बीती को बिंदी लगा दें, क्योंकि बीती बातों के चिंतन में भी हमारा बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। तो बीती बातों को बिंदी लगाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करना पड़ेगा ना विचारों को। बिंदी बीती बातों को बिंदी लगाना हिंदी में, बाकी इंग्लिश में फुल स्टॉप भाव तो एक ही होगा दोनों चीजों का, लेकिन उसके लिए करें क्या? तो उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर, विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी? वो आएगी स्वमान के अभ्यास से और ज्ञान के मनन चिंतन से। हमारे विचार महान बनेंगे और जहां विचार महान है तो उनको हम सहज कंट्रोल कर सकेंगे, और जहां कंट्रोलिंग पावर है तो वहां बीती को बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना सहज होगा। चलिए अभी फुल स्टॉप लगा दो सब बातों को और बिंदी बन जाओ। तो मैं सुना रहा था कि फुल स्टॉप और फुल स्टॉक दो बातें, तो फुल स्टॉप कैसे लगाएं वो तो मैंने बताया, लेकिन फुल स्टॉक, हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल हो जाए उसके लिए क्या करें? तो क्यों इस चीज की बाबा ने आवश्यकता बताई? क्योंकि वर्तमान समय, आगे आने वाले समय को देखते हुए जब विनाश की प्रक्रिया शुरू होगी एक तरफ, दूसरी तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो अनेक तड़पती भटकती दुखी अशांत आत्माएं हम सभी के सामने आएंगी। हमें सुख दो शांति दो नजर से निहाल करो, तो हम उनकी हर इच्छा पूरी कर सकें। वो कब कर सकेंगे? जब हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होगा। तो बाबा ने जो भी खजाने दिए हैं, तन मन धन समय श्वास संकल्प ज्ञान गुण शक्तियां, उन सभी खजानों को दूसरों को दान देंगे, सेवा में लगाएंगे, सफल करेंगे। जितना सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त बनते जाएंगे। तो इसके ऊपर उतना हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके पास बहुत धन था, अथा धन था, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी। तो और सब बोलते थे माता को, माताजी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो ले लेगी, इससे तो अच्छा क्यों ना आप बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो। लेकिन वो किसी का नहीं सुनती थी, फिर भी थोड़ा सा ही करती। तो एक दिन क्या हुआ, रात को वो सोई हुई थी तो उसने स्वप्न देखा। तो स्वप्न में क्या देखा कि वो बुढ़िया स्वर्ग में पहुंच गई है। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया के दिल खुश हो गई, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो और लोग सब स्वर्ग में अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था इससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ ताकि मैं भी देखूं आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा, भाई जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़कर आओ। तो वो व्यक्ति वहां से चलता है, तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, और जैसे जैसे वो आगे चलता जाता धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे हैं। तो बुढ़िया सोचने लगी, ये कहां लेके जा रहा है, यहां तो और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे हैं। लास्ट में जाके एक छोटी सी कुटरिया वो माता की बनी हुई थी, तो कहा, माता जी ये आपका महल है। देख कड़ी बुढ़िया बड़ी परेशान कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है। तो व्यक्ति जवाब देता है, माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए, समझे हैं? क्योंकि वो करती थोड़ा सा थी। तो देखो भगवान तो दाता है, किसका लेकर क्या करेगा। आज जो भी हम उसके यज्ञ में सफल कर लेंगे उतना हमें भविष्य में मिल जाएगा। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। वो सफल करने लगी। तो आप सोच लेना कि आपको स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए, इसका निर्णय आप स्वयं ले लेना। और बड़ा महल चाहिए तो फिर क्या करना है वो भी आप सोच लेना, क्योंकि समय तो इशारे दे ही रहा है सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो वैसे ही सब खत्म होना ही है, अगर हम उसके पहले बाबा की भंडारी में सफल कर लेंगे तो अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। तो इसलिए केवल धन की बात नहीं वो भी, लेकिन और भी जो भी खजाने बाबा ने दिए हैं उन सबको हम सफल करें, दूसरों को दान दें, सेवा में लगाएं, तो उतना हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होता जाएगा और हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और जो मैंने नियम मर्यादाओं वाली बात बताई उसमें एक ये भी विशेष बात है, बहुत कम भाई बहन माना मोस्टली तो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ एक भाई बहनों का ध्यान इस बात पर कम होता है, जिसमें क्या कि विशेष कर आजकल बहुत ये भी बड़ी एक माया है क्या कि अन्न की शुद्धि का न होना। हम पुरुषार्थ तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन चलो चलता है, मार्केट में आइसक्रीम खा ली, कभी और कुछ खा लिया, ब्रेड खा ली या और कुछ पी लिया, आजकल ये पेप्सी क्या ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये वो सब चलता है। हम किसकी याद में निरंतर योगी बनना चाहते हैं या रहना चाहते हैं? पवित्रता का सागर बाप की याद, वो निरंतर रहे हमारे को, वो तभी रहेगी कि जब कि आपका बुद्धि रूपी बर्तन एकदम स्वच्छ और पवित्र होगा। अगर जरा भी किसी प्रकार की अस्वच्छता है तो वहां बाबा की याद नहीं ठहर सकेगी, पुरुषार्थ आपका तीव्र गति का नहीं होगा। बात छोटी सी लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे छोटी छोटी श्रीमत नियम मर्यादाओं का यदि हम उल्लंघन करके चलते हैं तो धीरे धीरे एक बड़ा बोझ बन जाता है, और वो बोझ हमारा अपनी ओर अपनी बुद्धि को खींचता है और वो पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनता है। इसलिए जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताएं, अन्न की शुद्धि और जो भी, उन सब की पूर्ण पालना करके हम चलें तो आप देखो आपका बुद्धि की लाइन बाबा के साथ सदैव क्लियर रहेगी, अन्न की शुद्धि से भी क्लियर रहती है और सभी प्रकार का विस्तार को समेट कर हम सार स्वरूप बने, क्योंकि अब वापिस घर जाने का समय आया है। अभी हम विस्तार में फंसे रहेंगे तो सार स्वरूप कब बन पाएंगे है? तो अभी सब कुछ समेट लें, उतना विस्तार रखें जितना कि हम हमारी बुद्धि उसमें ना फंसे, जब चाहे उसे निकालकर बाबा में लगा सकें। और तीसरा, बुद्धि की लाइन सदैव बाबा के साथ क्लियर रहे उसके लिए हम पवित्रता में संपूर्ण बने। पवित्र तो सब बने हैं लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसके लिए बाबा ने सात बातें बताई है। उन सात बातों को हम सामने रख के अपने आप को चेक कर लें कि हमने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया। तो पवित्रता का पहला स्वरूप है स्वच्छता, स्थान की, खाने की, रहने की, पहनने की, विचारों की, कपड़ों की, सब प्रकार की स्वच्छता हो, सफाई हो, तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, अर्थात मनसा वाचा कर्मना, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्माचारी कहा जाता है, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी हमारी धारणा कहां तक बनी। और चौथा स्वरूप है संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे पांच विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन जो उनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको कईयों ने अपने पास संभाल के अभी तक रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, सुस्ती, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, जो भी नेगेटिव बातें हैं, अगर उनमें से एक भी हमारे अंदर है तो वो भी है पवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी, तो संपूर्ण पवित्र तो नहीं हुए ना फिर। तो इस तरह से भी चेक कर चेंज करें। और पांचवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का अमृत विल से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो। एक साकार मुरली बाबा ने बात कही तो उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी है पवित्रता है, इसलिए इससे भी मुक्त बनो। और सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी है पवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को सामने रखकर हम अपने आप को चेक कर लें कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी, तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे। एक छोटा सा अनुभव, हम 6 साल पहले नेपाल गए थे भट्टी कराने, तो इंडिया बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना आश्रम है और उधर नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना आश्रम है। तो इंडिया वाले आश्रम से हम नेपाल में जा रहे थे एक भाई के साथ मोटरसाइकिल बैठ के, तो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। हम भी पहुंचे तो हमारे को बोला कि वापस जाओ, हम नहीं जाने दे। हम इनके तो बड़ी समस्या आ गई, वहां सेंटर पर भट्टी रखी है, 150-200 लोग इंतजार कर रहे हैं और ये कहते हैं वापस जाओ, तो अभी क्या करें भाई। तो वहां खड़े खड़े बाबा से कनेक्शन जोड़ा और बाबा को दिल से याद कर कहा कि बाबा अभी देखो इन्होंने बॉर्डर बंद किया और कहते वापस जाओ, वहां सेंटर पे भट्टी रखी है और वहां भाई बहने 150-200 हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो अब मेरे को क्या करना है वो आप ही बताओ, वही करूंगा मैं। ऐसे दिल से याद कर बाबा को कहा और 3 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, आप उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है, तो हम गए दोनों भाई, सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था दोनों को, जाकर उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू से आए हैं, तो हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर आश्रम है, तो वहां इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा है, तो 150-200 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं फिर तो जाइए। जो 2 मिनट 3 मिनट पहले ना हो गई वो 3 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग ली और वैसा करने में सफल हो गए। तो वर्तमान में भी आगे आने वाले समय में इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल हो सकें। वो तभी संभव होगा जब हम अपनी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ निरंतर क्लियर रख के चलेंगे, तो कदम कदम पर आपको बाबा की सही टचिंग मिलती रहेगी और वैसा करने में सफल होते रहेंगे, तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा और एक तीव्र पुरुषार्थ करके निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएं। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति। अभी मैं 2 मिनट का समय और लूंगा वो एक बात के लिए कि वो भी तीव्र पुरुषार्थ में बात एक छोटी सी है, क्या आप बैठिए भले, वो ये है कि कई भाई बहनों को योग करते करते या क्लास मुरली सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो नींद से मुक्त होने के लिए बताएं तो 7-8 बातें हैं, शॉर्ट में एक एक पॉइंट की है, ज्यादा नहीं। वो ये हैं कि एक तो दिन में 1-1.5 घंटा रेस्ट जरूर कर लें, रात को टाइम पर सोएं, हल्का भोजन हो, देरी से भोजन ना करें, और योग में बाबा से बातें करें, मन को बिल्कुल शांत नहीं करें। आप किसी से बात कर रहे होंगे तो नींद आएगी फिर है? नहीं आएगी ना, तो दिल की बातें करें, दिल की रूह-रूहान करें बाबा से, तो नींद नहीं आएगी। और इसके अलावा एक अधिक नींद आने का कारण बनता है कि जिनका ब्लड प्रेशर धीमी गति का है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उसके कारण ज्यादा नींद आती है, तो उसका इलाज कराएं। ये सब कुछ करने के बाद भी नींद अधिक आए तो फिर आप इन 5 बातों का प्रयोग करके देखना। पहली बात, जब हम 5-6 घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारी आंखें 5-6 घंटे बंद रहती है, योग में हम ऐसे खोल के बैठना चाहते हैं, आंखों को आदत पड़ी है बंद रहने की, तो ऐसे खुलती तो है, योग करते 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 कब झटका आ जाता है फिर पता ही नहीं चलता, कोई पीछे वाला हाथ लगाएगा, नहीं नहीं हम यहीं थे योग कर रहे थे, भाई क्या अनुभव किया, कहते बहुत शांति मिली है। तो क्या करें उसके लिए, जब सुबह हम उठते हैं हाथ मुंह धुलाई करते हैं तो उस समय मुंह में पानी भर लो और इस तरह से मुंह की एक्सरसाइज करो, ऐसे 8-10 बार कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी पलकों की नसों का कनेक्शन मुंह के साथ है, मुंह में जब पानी भर के मुंह की ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पलकों की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और वो नसें जो यहां आकर सुकड़ गई हैं आंखें बंद रहने से, तो उस एक्सरसाइज से धीरे 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 खुलकर वो नसें अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएंगी, तो फिर से जल्दी से आंखें बंद नहीं होंगी। एक बात, दूसरी बात, जब हम 5-6 घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारा ब्रेन माइंड सुस्ती आलस के प्रभाव में ज्यादा होता है, भले आपने हाथ मुंह धुलाई कर लिया, ब्रश कर लिया था, कोई चाय पानी पी लेते हैं, तो उससे काफी सुस्ती कम होती तो है, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रभाव माइंड पर सुस्ती आलस का रहता है। तो क्या करो, जैसे हमारे हाथ और पैरों में शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, डॉक्टर वो पॉइंट दबा के अनेक रोगों का इलाज करते हैं, ऐसे हमारे कान के अंदर भी शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और विशेषकर कान में नीचे के भाग में जहां माताएं कुछ पहनती हैं, ये नींद का पॉइंट है। ये पॉइंट भी और सारे पॉइंट भी दबा लो अच्छी तरह से, लेकिन अभी नहीं दबाना, अभी जाके सोना है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। हाँ, योग में आने से पहले ये काम करके आना है तो आपको सुस्ती नहीं आएगी। हाँ, तो इससे क्या होगा कि ये माइंड के नजदीक है ना पॉइंट, तो पॉइंट दबाते ही तुरंत माइंड पर उसका इफेक्ट होगा और माइंड आपका अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। फिर कोई अच्छे स्वमान का अभ्यास करते योग करेंगे तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। तीसरी बात, माइंड को और एक्टिव अलर्ट बनाने के लिए, सुस्ती से मुक्त होने के लिए, हमारे माइंड की सभी नसें गर्दन के द्वारा शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो योग में जाने से पहले इस तरह से थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज कर ले, चार पांच बार यों और चार पांच बार यों, लेकिन करना धीरे धीरे, कहीं झटके से गर्दन घुमा दी, कोई नस वगैरह खिंच गई तो कहेंगे भाई जी ने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, ऐसे ना हो, आराम आराम से करें। तो इससे क्या होगा, जब हम गर्दन की नसों की एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो नशे नींद के कारण शांत सुन्न पड़ गए उनमें एक्टिवनेस अलर्टनेस आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। फिर कोई अच्छे सुमान का अभ्यास करते योग करेंगे तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। चौथी बात, नींद से मुक्त होने के लिए इस तरह से कान की थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, तीन चार बार यों, तीन चार बार यों और तीन चार बार यों, तो इससे भी नसों में चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। पांचवी बात, जिनको ये पता है कि मुझे योग में सुस्ती आती है, नींद आती है, तो अपने साथ रुमाल जरूर रख के बैठे। कोई अचानक योग में नींद नहीं आ जाती है, नींद आने से पहले थोड़ा सा ऐसे नशा सा चढ़ता है, आपको लगेगा अभी नींद का नशा चढ़ने लगा है, तो उठाया रुमाल, हल्के हाथ से एक आंख पर घुमा लिया, दूसरे आंख पर घुमा लिया, पूरे चेहरे पर घुमा लिया, आधा मिनट में एकदम फ्रेश, सुस्ती खत्म। इस तरह से आप इन बातों का प्रयोग करके चलो तो निद्रा देवी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और आप अपना कान इस तरह रोजाना पकड़ते रहेंगे तो माया आपका कान कभी नहीं पकड़ेगी। ओम शांति।
ओम शांति। सभी प्रयोग अपना करके एक ही बात दिमाग में रखो, मुझे मुझ आत्मा को बाप समान बनना ही है। ये सारे बाप समान बनने के सारे हमें लेसन्स मिल रहे हैं, दो दिन से हम सभी सुन रहे हैं, इसलिए छोटेलाल भाई का बहुत बहुत दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं।